हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। इतना बोलते हुए करण कॉल पर उस शख्स को पूरी बात डिटेल में बताने लगा और वहाँ सामने खड़ी हुई शिविका चुपचाप करण की बात सुन रही थी। वो किसी से तो फ़ोन कॉल पर बात कर रहा था और रमन इस नाम का कोई तो शिविका के ध्यान में नहीं था, लेकिन उसे लगा कि हो सकता है कोई उसके लिए काम करने वाला हो। जो कोई भी हो, उसे तो बस अभी काव्या से मतलब था। शिविका ने बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए मन ही मन काव्या के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान जी प्लीज़ मेरी काव्या की रक्षा करना और जल्दी से मुझे उसके पास पहुँचा दो। इतना बोलते हुए शिविका की आंखों में फिर से आंसू भर आए, जो कि करण को भी नज़र आ रहे थे, और वो उसे इस तरह से नहीं देख पाया। इसलिए आगे आते हुए उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा काव्या को, तुम प्लीज़ टेंशन मत लो और इस तरह से रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। करण ने जैसे ही इतनी बात बोली, शिविका जो इतनी देर से खुद का रोना कंट्रोल कर रही थी, वो तुरंत ही आगे आई और करण के सीने पर अपना सर रखते हुए जोर जोर से रोने लगी। और वो इस तरह रोते हुए बोली, यू आर एब्सोल्युटली राइट करण, मैं बहुत बुरी माँ हूँ और मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनी। तुम शायद किसी खतरे की बात कर रहे थे, मुझे तुम्हारा फ़ोन कॉल रिसीव कर लेना चाहिए था, तब शायद मुझे पता होता इस बारे में और मैं अलर्ट रहती, काव्या को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देती। कल के लिए भी सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। उसे इस तरह से रोते देखकर करण ने उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उसे एकदम कसकर अपने गले से लगा लिया और कसकर अपनी आंखें बंद की। करण की आंखों से भी कुछ आंसू निकले, लेकिन फिर भी वो और ज़्यादा कमज़ोर नहीं पड़ सकता था, उल्टा शिविका को भी उसे ही संभालना था। इसलिए उसने कहा, क्या बकवास बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें यही इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा था, और तुमने रिसीव नहीं किया वो ज़रूर तुम्हारी गलती है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि भीड़ का फ़ायदा उठाकर ये सारे काम काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। और स्कूल के बाहर जब हम लोगों पर अटैक हुआ था, तुमने उस वक्त भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। एंड फॉर गॉड सेक शिविका, मैं चाहे जितना भी बड़ा धोखेबाज लालची इंसान हूँ तुम्हारी नज़रों में, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी और काव्या की जान को ख़तरा हो, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। उसकी ये बात सुनकर शिविका ने अपने आंसू पोंछते हुए हाँ मैं चुपचाप अपना सिर हिलाया, और तभी करण का मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ और वो कॉल पर बात करने लगा। उसे फ़ोन कॉल पर बात करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही चेंज हो गए और उसने कहा, ओके ठीक है, तो मुझे लोकेशन भेजो बस। इतनी बात करते हुए वो वापस कार में ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया, और उसे बैठते देखकर शिविका भी तुरंत ही दूसरी साइड पर बैठ गई, और शिविका के बैठते ही करण बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर दी। कार में बैठने के बाद से शिविका के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जैसे कि किसका फ़ोन कॉल था और करण को क्या पता चला, वे दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्या काव्या का पता चल गया है। लेकिन इतने सारे सवाल मन में चलने के बाद भी शिविका अभी सिर्फ बेबसी से करण की तरफ देख रही थी, वो उससे अभी कोई भी सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। करण भी कुछ नहीं बोला और उसने कार की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी, क्योंकि वे लोग इस वक्त एक काफ़ी खाली सुनसान सड़क पर थे, जहां पर कोई ट्रैफिक और ज़्यादा गाड़ियां नहीं थी, और जहां के लिए भी करण जा रहा था उसे बस अभी वहां पर जल्दी पहुंचना था। दूसरी तरफ ऋषभ ने समर से हाँ कर दी थी उसे शूटिंग पर जाने के लिए, और वो भी सिर्फ समर की वजह से, लेकिन इन दो तीन दिनों तक होली की छुट्टियाँ थीं, इसलिए डायरेक्टर ने उससे कहा था कि अभी कोई भी काम नहीं होगा और होली की छुट्टी के बाद ही वो सब दोबारा से शुरू होगा। और उसने भी सबसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ सर आप आ जाइएगा, तीन दिन बाद ही सही, हम लोग सारा सेटअप सिर्फ आपके लिए ही करेंगे। तो ऋषभ आखिरकार उसकी बात मान गया था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी उसका ध्यान बार बार समर में ही अटका हुआ था। और जब से उसे ये बात पता चली थी कि समर और रूही रिलेशनशिप में हैं, वे दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तब से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसके लिए बस मूव ऑन करना ही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि समर ने कहा था वो स्ट्रेट है, और ये बात सच निकले, आप अगर किसी को लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो भला कैसे उससे प्यार कर सकता है। ये बात सोचते हुए ऋषभ इस वक्त अपने घर की बालकनी में टहल रहा है, जो कि उसका काफ़ी बड़ा तो नहीं लेकिन 3 BHK लग्जरियस फ्लैट है, जो कि उसने खुद अपनी कमाई से खरीदा है। फिलहाल उसके घर में कोई भी नहीं है, वो अपने सारे काम खुद ही करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई भी उसकी प्राइवेसी में दखल दे, वो हमेशा से ही ऐसा अलग तरह का है। और आज होली के दिन भी वो चुपचाप अकेला अपने घर में है। बालकनी से नीचे जाकर उसने वहां अपार्टमेंट के बच्चों को होली खेलते हुए देखा, जो कि रंग और पानी की पिचकारी लेकर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, और हंसने खेलने की आवाज़ उसके कानों में भी पड़ी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कराहट आ गई। लेकिन तभी उसे अपने रूम से मोबाइल फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनाई दी, तो अपनी कॉफ़ी सिप करता हुआ वो वापस रूम के अंदर आ गया। उसने मोबाइल फ़ोन उठाकर देखा और स्क्रीन पर जो भी नंबर था, उसे फ़िलहाल इस नंबर से शायद कॉल आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ सोचकर वो कॉल रिसीव कर लिया और जैसे ही ऋषभ ने वो कॉल रिसीव की, तुरंत ही उसके कानों में आवाज पड़ी, हैप्पी होली, और कहाँ हो आप? कम से कम फेस्टिवल के दिन तो कॉल या मैसेज करके विश कर दिया करो, वैसे भी कभी आपको याद तो नहीं आती किसी की भी। ऋषभ ने मोबाइल फोन कान से लगाकर वहीं बैठकर किनारे पर बैठते हुए जवाब दिया, कौन सा फेस्टिवल? मुझे किसी भी फेस्टिवल, फंक्शन, पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है। हाँ हाँ पता है, आपको तो किसी भी चीज से मतलब नहीं होता, इसलिए तो मैंने खुद ही कॉल कर लिया, बस ये कन्फर्म नहीं था कॉल रिसीव होगी या नहीं। इतना बोलते हुए दूसरी तरफ से वो लड़की हंसने लगी और उसकी बातें सुनकर ऋषभ भी हल्का सा मुस्कुराया और उसने पूछा, अच्छा ठीक है, तू बता कैसी है।